आइए देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। मौसमी परिवर्तनों से वर्षा के तरीकों में भी बदलाव आया है, जिसका हानिकारक प्रभाव हमारे स्रोतों पर पड़ रहा है। मीठे पानी के स्रोतों में खारा पानी मिल रहा है और जो खेतिहर भूमि है वो मरुस्थल में बदलती जा रही है। गंदे जल एवं गर्मी के कारण होने वाले विभिन्न रोग बढ़ रहे हैं। इन सभी बदलावों से परिवर्तनों से आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जाहिर है पड़ेगा ही। अब इसके अतिरिक्त और क्या चीज़ें हैं, हमने कुछ बिंदुओं में संजोया है। जैसे समुद्र में पाई जाने वाली समुद्री घास अथवा रीफ्स, जिसको कहते हैं रीफ्स, इसकी मात्रा कम हो रही है। इसके कारण जो मछलियों का उत्पादन है वो भी कम हो जाएगा। दूसरी बात कि निरंतर बढ़ती गर्मी और मानसून की अनिश्चितता से मैदानी क्षेत्रों की फसलों में उत्पादन में कमी आ जाएगी। तीसरी बात कि वर्तमान समय में विश्व की कुल आबादी जो कि 6.5 अरब है, इसमें से 2 अरब से भी अधिक आबादी समुद्र तट से 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है, जिस पर समुद्री तूफान और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा करोड़ों लोग पहाड़ी इलाकों तथा अर्ध मरुस्थलीय स्थानों पर रहते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा न होने से फसलों को हानि होगी। आप देखिए अगले नंबर पे तुबालू और किरीबती जैसे द्वीपों में बढ़ते समुद्र जल स्तर के कारण तटवर्ती सड़कों और फसलों को हानि हो रही है, जिसके कारण वहां के लोगों का जीवन व्यस्त अस्त व्यस्त हो गया है और इसी कारण से वहां के लोग अपने मूल देश से पलायन करने की योजना भी बना रहे हैं। अगला बिंदु देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अफ्रीका के किलिमंजारो के जो हिमखंड है अगले 15 वर्षों में पूरी तरह पिघल जाएंगे, जिसके दुष्परिणाम भविष्य में बहुत ही भयावह होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं इसके, कि इसके कारण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से वर्षा की दर बढ़ेगी और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा में पौधे जल्दी बढ़ रहे हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी तेज हो गई है। परंतु ग्लोबल वार्मिंग के या वैश्विक तपन के इसके फायदे बहुत कम हैं और नुकसान ज़्यादा हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि वायुमंडल से यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटा दी जाए, फिर भी हम जलवायु को पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए यह एक जटिल समस्या है जो सभी प्राणियों के लिए नुकसानदेह है, हानिकारक है। आइए देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए क्या विचार किया है। उसने कहा कि पर्यावरण और विकास विश्व परिषद का गठन किया गया, 1988 में IPCC का गठन किया गया और विश्व जलवायु कार्यक्रम की शुरुआत विश्व मौसम संगठन और वैज्ञानिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में जो की गई। 1979 में पहला जलवायु सम्मेलन द्वारा सरकारों से मनुष्य के क्रियाकलापों से हो रहे परिवर्तन को रोकने की अपील की गई। अगला क्या किया इसने प्रयास कि क्योटो समझौते के अनुसार सन 2008 से 12 के दौरान राष्ट्रों को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 90 के स्तर से कम 5% नीचे करने का निर्देश दिया गया। 178 राष्ट्रों ने इसे स्वीकृति दी, अमेरिका अलग रहा था उस समय। अगला बिंदु देखिए, वर्ष 1995 में IPCC ने 2000 वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा दूसरी रिपोर्ट पेश की थी। अगली बात, इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन हेतु निर्माण किए गए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से कानूनी रूप में बांधने हेतु समझौता हुआ था। 1997 में ही क्योटो इक्वाडोर में राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट आइए, वर्ष 1990 में ही द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन द्वारा जो सिद्धांतों का समर्थन किया गया। जलवायु परिवर्तन को मानव जाति के लिए बहुत बड़ी समस्या माना गया था। इस जलवायु परिवर्तन पर एक समझौते का ढांचा बनाने की बात की गई। विभिन्न देशों के लोगों ने इस विकास प्रक्रिया को अलग स्तरों पर जिम्मेदारी निश्चित की और उसको निभाया भी। मसौदे के एजेंडा 21 के अनुसार सन 2000 तक ग्रीन हाउस गैसों को 90 के स्तर पर लाने की बात की गई। वर्ष 1992 में रियो जेनेरो में हुए पृथ्वी शिखर वार्ता में 154 राष्ट्रों और यूरोपीय संघ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए तैयार किए गए मसौदे पर हस्ताक्षर किया गया। अगले बिंदु पे चलते हैं। वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर जलवायु परिवर्तन की बात स्वीकार की गई। 1990 में IPCC ने पहली रिपोर्ट पेश की और रोकने हेतु व्यूह रचना का सुझाव दिया गया। अगला बिंदु, क्योटो समझौते में विश्व के 55% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार 55 देशों से औपचारिक स्वीकृति देने को कहा गया और अमेरिका ने यह स्वीकार कर लिया कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अगले प्रयास पे चलते हैं। वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा की विशेष सत्र बुलवाया गया और रियो जेनेरो के बाद की स्थिति की समीक्षा की गई। अगला बिंदु, IPCC ने 2001 में तीसरी रिपोर्ट पेश की और अंतिम बिंदु, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 यह अब तक के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सबसे महत्वपूर्ण था। इसका आयोजन विभिन्न सम्मेलनों में निर्धारित लक्ष्यों को फलीभूत करने हेतु ठोस कार्य पद्धति बनाने के लिए हुआ था और इसका आयोजन विभिन्न सम्मेलनों में सबसे महत्वपूर्ण था। सम्मेलन सापेक्ष सफलता नहीं प्राप्त कर पाया था। तो इस प्रकार से आपका ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तपन पाठ के बाद मैं आपको स्तंभों का पिघलना थोड़ा सा बताऊंगी उसके बारे में कि स्तंभों का पिघलना क्या है। ये आपके पर्यावरणीय शिक्षा में ही है। स्तंभों के पिघलने के अंतर्गत हम देखते हैं कि स्तंभ पिघलन यह एक प्राकृतिक घटना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण इस गैस का एक मोटा आवरण बन जाता है और यह आवरण पृथ्वी से लौटने वाले जो ऊष्मीय विकिरण है उसको बाहर जाने से रोकता है। इस कारण पृथ्वी के बड़े बड़े जो हिमखंड हैं वो गड़बड़ होने लगते हैं, पिघलने होने लगते हैं और इसी कारण पृथ्वी के क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। यही क्रिया जो है आपकी, ऊपर जो मैंने पहले आपको बताया, यह क्रिया ग्रीन हाउस कहलाती है। इसी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ऊष्मा वृद्धि होने से जो बड़े बड़े हिमखंड हैं वो बर्फ के टोप पिघलने लगते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए जरूरी भी है, आपको मालूम है। ये स्तंभ पिघलने के कारण महानगरों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ इत्यादि आने की संभावना रहती है। तो ये जो स्तंभ पिघलन है यह एक प्राकृतिक घटना है। इस प्राकृतिक घटना से हम जब इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है तो हमारे जनजीवन पर, हमारे सामान्य जीवन पर, हमारे पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ने के कारण हमारे लिए हानिकारक हो जाता है।